हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 36 से लेकर 40 तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचि न यत्र युष्मत् चरणं भुजासव महत्तमान्तर हृदयान्मुखोच्युतो विधत्स्वकर्णा युतमीशमीवर। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनं तं नमामि हरिं परम्। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिहवे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामो धर्मादवीति। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशो जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 36। इस आध्यात्मिक शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। बहुत ही सुंदर रीति से विदुर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं, अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम अनाप्रष्टम् अपि ब्रूयु गुरवो दीनवत्सला। अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम अनापृष्टम् अपि ब्रूयु गुरवो दीनवत्सला। अनुव्रतानां मतलब अनुयायी जो होते हैं, और शिष्याणां यानी शिष्यों के, पुत्राणां पुत्रों के च द्विजोत्तमा हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मतलब जो पुत्र होते हैं, जो अनुयायी होते हैं, जो शिष्य होते हैं हे ब्राह्मण, अनापृष्टम अनपूछा, अगर वो हम उनसे पूछते नहीं भी हैं अपि ब्रूयु, फिर भी वो कृपया करके जो श्रेष्ठ जन होते हैं, मतलब जो माता पिता होते हैं, जो गुरु जन होते हैं, वो खुद ब खुद कृपा करके ब्रूयु बताते रहते हैं गुरव गुरुजन दीनवत्सला, क्योंकि उनके हृदय में दीनों के प्रति बहुत कृपा होती है। अनुवाद, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो गुरुजन हैं वे दीनों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं। वे अपने अनुयायियों, शिष्यों तथा पुत्रों के प्रति सदैव कृपालु होते हैं और उनके द्वारा बिना पूछे ही सारा ज्ञान प्रदान कर देते हैं। तो क्योंकि विदुर जी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, तो साथ साथ में ये भी बता रहे हैं कि देखो मैं तो दीनवत्सल हूँ, आप तो ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, आप तो द्विजोत्तम हैं, और आप जैसे श्रेष्ठ जो भगवान के भक्त होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, वो तो बिना पूछे भी अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, अपनी अनुयायियों को भगवान के विषय में बताते रहते हैं। तो हो सकता है कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, मैंने अभी बहुत सारे प्रश्न तो पूछे हैं, लेकिन अभी विदुर जी ने क्या क्या पूछा है, संसार में सृष्टि के बारे में पूछा, और फिर उस किस तरह से जो भगवान के कारण दक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु के विषय में पूछा, भगवान के गुणावतार के विषय में पूछा, संसार में जब जीव आता है उसके विषय में पूछा, और मनमंत्रों के विषय में पूछा, और इस बहुत सारी विषय में पूछने के बाद बोला ये भी बता दीजिए कि ये नवा भगवान त्वेषेत् धर्मयोर्जन जनार्दन संप्रसीदति वायेष्याम एतदाख्या हि मे नघ। हे निष्पाप पुरुष, क्योंकि समस्त जीवों के नियंता भगवान, समस्त धर्मों के तथा धार्मिक कर्म करने वाले समस्त लोकों के पिता हैं, अतः कृपा करके इसका वर्णन कीजिए कि उन्हें किस तरह से पूरी तरह से संतुष्ट किया जाता है। तो भगवान के विषय में भी बताइए, लेकिन फिर भी बोलने हो सकता है कुछ पूछना रह गया हो, तो कृपया वो भी बता दीजिए, क्योंकि आप तो दीनवत्सल हैं और आप जैसे कृपालु तो बगैर पूछे ही सब कुछ बताते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं प्रामाणिक गुरु से जानने योग्य अनेक विषय होते हैं। प्रामाणिक गुरु के लिए अनुयायी, शिष्य तथा पुत्र सभी एक समान होते हैं और वह उन पर सदैव कृपालु रहता है तथा उनके ना पूछने पर भी वह सदैव उन्हें दिव्य विषयों के बारे में बतलाता रहता है। यही प्रामाणिक गुरु का स्वभाव है। विदुर ने मैत्रेय मुनि से ऐसे विषयों के बारे में भी बताने के लिए अनुरोध किया जिन्हें उन्होंने उनसे ना भी पूछा हो। तो विदुर जी बता रहे हैं, देखिए शिष्यों को बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं होती कि ये भी गुरु से पूछूं, इसके बारे में भी पूछूं। तो विदुर जी कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ चीज़ें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, लेकिन मुझे उसके बारे में प्रश्न करना नहीं आता, आप कृपया वो भी बता दीजिए। आगे कहते हैं, तत्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः तत्रेमं क उपासीरन् क उस्वत् स्विद्धनु शीरते। तत्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः तत्रेमं क उपासीरन् क उस्वेदनुशीरते। तत्वानां यानी प्रकृति के तत्वों का, जो तत्व हैं भगवते हे महर्षि, तेषां उनके कतिधा प्रतिसंगते, कतिधा माने कितने बार, प्रतिसंग यानी प्रलय होता है, तो ये जो प्रकृति के तत्व हैं कितनी बार उनका प्रलय होता रहता है। और तत्र वहाँ इमम यानी जो भगवान है, तत्र इमा क उपासिरन, उस भगवान को कौन सेवा कौन करता है, क मना वे कौन है, उपासिरन मतलब बचाया जाकर, जो बच जाता है, जो उनकी सेवा करता है, और क उस्वेदन अनुशेरते, क मना कौन है, उ मना जो स्वीत यानी कर सकती है, अनुशेरते यानी भगवान के शयन करते समय। अब जब प्रलय हो जाता है तो भगवान तो शयन कर रहे होते हैं, तो उस समय तो सब लोग जो है वो प्रलय के समय तो सारे जो जीव हैं वो भगवान के अंदर ही चले जाते हैं। तो वे कहते हैं मुझे पहले तो ये बताओ, तत्वानाम भगवान स्तेषाम कतिदा प्रतिसंक्रम, कितनी बार प्रलय होता है और तत्रेमम कपासीरन कऊ स्वेद अनुशेरते, कि कौन बच जाता है जो उस समय भगवान विश्राम कर रहे होते तो उनकी सेवा कौन करता है। अनुवाद, कृपया इसका वर्णन करें कि भौतिक प्रकृति के तत्वों का कितनी बार प्रलय हुआ है और इन प्रलयों के बाद जब भगवान सोए रहते हैं तो उनकी सेवा करने के लिए कौन जीवित रहता है। श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म संहिता 5.47 से 48 में ये कहा गया है कि जब महाविष्णु योग निद्रा में रहते हैं तो उनकी श्वास लेते समय असंख्य ब्रह्मांडों समेत सारे भौतिक जगत प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। यह कारण अवजले भजते स्म योग निद्रम अनंत जगदंड सरोमखु आधार शक्तिमवलंब परां समूर्तिं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिश्वसितकालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महंस इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अर्थात गोविंद जो कि सर्वोच्च तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं, अपनी उस निद्रा के समय असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करने के लिए कारणों में अनंत काल तक सोते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सोए और फौरन से सृष्टि, नहीं, अनंत काल तक प्रलय के बाद बिल्कुल काम शांति और फिर शांताकारम भुंजग शयनम पद्मनाभम, एकदम आनंद से जब सो रहे होते हैं वो सांस लेते हैं और फिर ब्रह्मांड जो है उनकी सृष्टि होती रहती है। लेकिन ब्रह्मांड के अंदर कुछ नहीं होता है, सिर्फ ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा जल में लेटे रहते हैं, मैं उन आदि भगवान की पूजा करता हूँ, वो ब्रह्मांडों को निकालते रहते हैं। और ब्रह्मा जी बोलते हैं क्या तो कार्य करते हैं, एक छोटा सा घर बनाने के लिए कितना तो सरदर्दी करनी पड़ती है, उनको कुछ करना ही नहीं है, बस सो जाओ सांस लो और ब्रह्मांड निकल रहे हैं, ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। तो उनके श्वास लेने से असंख्य ब्रह्मांडों का जन्म होता है और जब वे श्वास निकालते हैं तो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामियों का संहार हो जाता है। भगवान का वह श्वास महाविष्णु कहलाता है। स्वांश जो भगवान वो कौन कर रहा है, ये महाविष्णु या कारण दक्षिणा, और वे भगवान कृष्ण के अंश के अंश होते हैं। ये विष्णुर महंस इह यस्य कला विशेषो, यानी भगवान कृष्ण के अंश कौन है, कारण दक्षिणा विष्णु, और उनसे ये हो रहा है। तो अंश के अंश हैं भगवान विष्णु के, सॉरी भगवान कृष्ण के अंश जिनसे ये सारे निकले हैं वो कौन है, संकर्षण, और संकर्षण से ही जो ये महाशंकर्षण से ये कारण दक्षिणा विष्णु, गर्भोदक्षिणा विष्णु और क्षीरोदक्षिणा विष्णु, तो अंश के अंश है। विष्णु महान से ये हो ऐसा कला है, वो कला है उनकी, और यहाँ और वे भगवान कृष्ण के अंश हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उन भगवान को गोविंद की पूजा करता हूँ। तो भौतिक जगतों के प्रलय के पश्चात ना तो भगवान का न कारणों के परे उनके राज्य का विलय होता है, ना ही वहाँ के निवासी भगवान के संगियों का, भगवान के संगियों की संख्या उन जीवों से काफ़ी अधिक है जिन्होंने भौतिक संगति के कारण भगवान को बुला दिया। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी बोलते उन्होंने पूछा था ना कि भाई जब प्रलय हो जाता है तो भगवान की सेवा करने के लिए कौन बचता है, तो श्रीला प्रभुपाद जी बोलते प्रलय होता है तो इस भौतिक जगत का होता है ना, ब्रह्मांड को होता है, तो उस प्रलय के टाइम पर भी, यहाँ साफ साफ बताया कि भौतिक जगतों के प्रलय के पश्चात ना तो भगवान का ना कारण व के परे उनके राज्य का प्रलय होता है। कारण जो जल है जिसको वृजा नदी कहते हैं, उसके परे जो कुछ भी है वो सब ऐसे का ऐसा रहता है, ना ही वहां के निवासी भगवान के संगियों का कुछ प्रलय होता है। भगवान के संगियों की संख्या उन जीवों से काफी अधिक है जिन्होंने भौतिक संगति के कारण भगवान को भुला दिया। हम तो 25% भी नहीं है, वहां 75% लोग बड़े हुए भगवान की सेवा करने के लिए। तो मूल भागवत के अहमेवा समेवाग्रे इत्यादि 4 श्लोकों में आए अहम शब्द की निर्विशेषवादियों द्वारा की जाने वाली व्याख्या का यहाँ खंडन किया गया है। कि निर्विशेषवादी जो खंडन करते कि भाई सब कुछ लीन हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, तो ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत ऐसे का ऐसा रहता है। भगवान तथा उनके नित्य संगी प्रलय के बाद बचे रहते हैं। विदुर द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विषय में प्रश्न किया जाना भगवान के समस्त साज सामान के अस्तित्व का स्पष्ट सूचक है। इसकी पुष्टि काशी खंड में हुई है, जिसका उद्धरण श्रीला जीव गोस्वामी तथा श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती दोनों ने श्रीला श्रीधर गोस्वामी का अनुसरण करते हुए दिया है। तो ये जो बताया जा रहा है, श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं सारे जितने भी हमारे गोस्वामी जन हैं, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी और जीव गोस्वामी, इन सबों ने काशी खंड में जो पुष्टि हुई है, भगवान के धाम, भगवान के जो परिकर गण हैं वो प्रलय के बाद भी वैसे ही रहते हैं, उनका प्रलय नहीं होता है। उसी के विषय में आगे श्रीला प्रभुपाद जी श्लोक का प्रमाण दे रहे हैं। वे कहते न च्यवन्ति हि यद्भक्ता महत्या प्रलयादपि महत्यां प्रलयापदि अतोच्युतोऽखिले लोके स एक सर्वगोव्यय। न च्यवन्ति हि यद्भक्ता महत्यं प्रलयापदि अतोच्युतोऽखिले लोके स एक सर्वगोव्यय। अर्थात संपूर्ण विराट जगत के प्रलय के बाद भी भगवत भक्त कभी भी अपनी निजी अस्तित्व नहीं खोते हैं। भगवान तथा उनके साथ रहने वाले भक्त इस जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में सदैव शाश्वत रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्त जो भगवान के धाम में हैं या कारण समुद्र के ऊपर जो जितने भी है ना भगवान के पार्षद हैं, परिकर हैं, सेवक हैं, वो तो सब ऐसे ही रहते। तो भगवान को सेवा के लिए किसी की आवश्यकता नहीं इस भौतिक ब्रह्मांड में। भौतिक ब्रह्मांड में भगवान जो कार्य कर रहे ना, उनके लिए भी भगवान को हमारी आवश्यकता नहीं है, ना आपकी ना मेरी। भगवान को प्रचार के लिए भी किसी की जरूरत नहीं है। भगवान को अपने नाम के भगवान के नाम को प्रत्येक घर और गांव तक पहुंचाने के लिए भी किसी की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान की अनुकंपा है, ये भगवान की कृपा है कि किसी जीव को श्रेय दे देते हैं। बस उनकी इच्छा है कि मैं कृपा करूं और वो कृपा करने के बहाने ढूंढते रहते हैं बस। उनको और कुछ नहीं करना आता जीव के ऊपर कृपा करने के अतिरिक्त। तो ये भगवान की अनुकंपा है कि उनका नाम ले रहे हैं, उनकी कथाओं को सुन रहे हैं, उनके विषय में बोल रहे हैं, ये हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। वरना भगवान के पास तो इतने इतने भक्त भरे पड़े हैं कि हमारे जैसे खीरे मकोड़ों की कोई औकात ही नहीं है। आगे विदुर जी और भी प्रश्न पूछते हुए कहते हैं पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैकमं यत्तत् गुरु शिष्य प्रयोजनं। पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानम च नैकमं यत्तद् गुरु शिष्य प्रयोजनम्। पुरुषस्य च संस्थानम्, यानी पुरुष यानी जीव का च संस्थानम् मना अस्तित्व, स्वरूप मतलब पहचान, वा या परस्य परम का च भी, यानी जो परम पुरुष भगवान है उनके विषय में बताइए कि उनका स्वरूप क्या है, उनका संस्थान मतलब उनका अस्तित्व क्या, उनके विषय में बताइए। और ज्ञानम च नए गमम, ज्ञान मतलब ज्ञान और नए गमम मतलब उपनिषदों के विषय में, वेद और उपनिषदों का ज्ञान है उसके विषय में बताइए। यत तद जो वही, और गुरु शिष्य प्रयोजनम के ये भी बताइए कि गुरु और उसके शिष्यों की का क्या प्रयोजन है, गुरु अनिवार्यताएं कहाँ है, गुरु को क्या क्या करना होता है, शिष्य को क्या क्या करना होता है, उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, उनके क्या क्या अधिकार हैं, उनके क्या क्या प्रयोजन हैं, उनके विषय में बताइए। अनुवाद देखिए, जीवों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयाँ हैं। पुरुषस्य च संस्थानम स्वरूपम वा परस्य च, जो जो सच्चाइयाँ हैं वो, ज्ञानम च नयगमम यानी उनके स्वरूप क्या हैं, और वेदों में ज्ञान के क्या विशिष्ट मूल्य हैं, और गुरु शिष्य प्रयोजनम और गुरु तथा शिष्य शिष्यों की अनिवार्यता का क्या क्या है। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते सारे जीव स्वाभाविक रूप से भगवान के दास हैं, ये सबसे पहले समझना है। और भगवान हर एक से सभी प्रकार की वस्तुएं स्वीकार कर सकते हैं। भगवान तो जो आप कार्य करते हो, भगवान कहते हैं यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददाति, तुम जो कुछ खाते हो, जो कुछ करते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, दान देते हो, सब मुझे अर्पण, तो हर वस्तु आपसे स्वीकार कर सकते हैं। ये स्पष्ट घोषणा की गई है 5.29 में कि भगवान सारे यज्ञों तथा तपस्याओं के लाभों के परम भोक्ता हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, समस्त व्यक्ति वस्तुओं के स्वामी तथा सारे जीवों के मित्र हैं। सुहृदम सर्वभूतानां, यही उनकी असली पहचान है। अतः जब जीव भगवान के इस परम परम स्वामित्व को स्वीकार करता है तो उसी भाव से कार्य करता है। एक जीव जब जान लेता है कि हर वस्तु के भोक्ता भगवान हैं तो हर वक्त उनको समर्पित करते हैं। वो जानते हैं कि सुहृदम सर्वजी भूतानाम, जितने भी जीव हैं उनके सुहृद हैं, तो फिर उनको चिंता खत्म हो जाती है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अतएव जब जीव भगवान के इस परम अस्तित्व को स्वीकार करता है तो उसी भाव से कार्य करता है तो वह अपने असली स्वरूप को धारण करता है। क्या स्वरूप है? मेरा स्वरूप है उस भगवान की सेवा करना। बाकी वो भगवान क्या करता है, जो भी करेगा उसी में मेरा कल्याण होगा, क्योंकि वो सुहृद है। तो जीव को ज्ञान के इस मानदंड तक ऊपर उठाने के लिए आध्यात्मिक संगति की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर जब तक जीव को भगवान के भक्तों की, शास्त्रों की, गुरुओं की शिक्षा प्राप्त नहीं होगी तब तक तो जीव समझेगा ही नहीं ना कि भगवान, वो तो हमेशा भगवान से कंप्लेन करता रहेगा कि भगवान ऐसा करता है, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने क्यों किया मेरे साथ ऐसा, है ना। लेकिन जब कोई गुरु जो है वो अपने शिष्य को बताएगा कि भगवान जो भी करता है वो हमारे कर्मों के अनुसार तो कर रहा है, लेकिन साथ साथ में भगवान हम पर कितनी अनुकंपा करता है, तो भगवान की कृपाओं को देखकर जीव जो है वो भगवान की सेवा करने के लिए तैयार होगा कि भगवान ने कितना सब तो मेरे लिए किया, मैं तो कितना अपराधी भी हूँ। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे जीव को ज्ञान के इस मानदंड तक ऊपर उठाने के लिए आध्यात्मिक संगति की आवश्यकता है। प्रमाणिक गुरु की इच्छा होती है कि उसके शिष्य भगवान की दिव्य सेवा करने की विधि जाने, और शिष्य भी यह जानते हैं कि उन्हें किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ईश्वर तथा जीव के नित्य संबंध के विषय में सीखना चाहिए। तो गुरु का सिर्फ एक ही अभिप्राय होता है कि जीव को उसकी रियलिटी बताएं, गुरु की इच्छा क्या होती है कि उसके शिष्य भगवान की दिव्य सेवा करने की विधि जाने, उनको याद आ जाए कि मैं भगवान का दास हूँ और वो विधि के साथ भगवान की सेवा करें। और शिष्य का क्या कर्तव्य है, शिष्य भी यह जानते हैं कि उन्हें किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ईश्वर तथा जीव के नित्य संबंध के विषय में सीखना चाहिए। वो जानता है, शिष्य का कर्तव्य है कि मैं अपने गुरु महाराज से ये सीखूं कि मैं किस तरह से अपने भगवान की सेवा करूं, क्योंकि मैं भगवान का दास हूं। तो विधि जो है वो गुरु से सीखनी होती है। तो इस दिव्य ज्ञान का वितरण करने के लिए मनुष्य को वैदिक ज्ञान के प्रकाश के बल पर सांसारिक कार्यकलापों से अवकाश ले लेना चाहिए। इस श्लोक के सारे प्रश्नों का यही सार समाहार है। तो जितना भी प्रश्न पूछा जा रहा है, श्रील प्रभुपाद जी को कहते हैं कि उसका सार क्या है कि जीव जो है उसको भगवान के नित्य संबंध के विषय को समझना चाहिए। और जब वो अपने नित्य संबंध को समझता है तो दिव्य ज्ञान का वितरण करने के लिए फिर मनुष्य को वैदिक ज्ञान के प्रकाश से के बल पर, यानी कि शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, जो गुरु ने कहा है, तो उसके बल पर संसारिक कार्यकलापों से अवकाश ले लेना चाहिए। अब भौतिक जगत के कार्यों में इतना लिप्त नहीं होना चाहिए और उसको अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। यही प्रयोजन है गुरु शिष्य के समागम का। और यही सच्चाई है कि भगवान भोक्ता हैं, भगवान सुहृद हैं और उनकी भक्ति करना ही जीव का लक्ष्य है। और यही सीखने के लिए ही जीव मनुष्य स्वरूप में शास्त्र पढ़ता है, गुरु महाराज को स्वीकार करता है, ताकि वो अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर जा सके। विदुर जी कहते हैं, निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्य गसूरिभि स्वतो ज्ञानं कुतो पुंसां भक्तिर्वैराग्यमेव। निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्य नगसूरिभि स्वतो ज्ञानं कुतो पुंसां भक्ति वैराग्यमेव वा। निमित्तानि च तस्येह, निमित्तानि मतलब ज्ञान के स्रोत, च भी तस्य ऐसे ज्ञान का, इह इस संसार में, प्रोक्तानि कहे गए, अनघ निष्कलंक सूर्य भी यानी भक्तों द्वारा, इन इस जगत में जो अनघ यानी निष्पाप और सूर्य भी यानी शुद्ध भक्त है, उनके द्वारा जो वाक्य कहे गए हैं, उनके द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं, वही तो ज्ञान के स्रोत हैं। इसलिए वे कहते हैं स्वतो ज्ञान कुतः पुंसाम, स्वतः मना खुद ब खुद आत्मनिर्भर ज्ञान, यानी ज्ञान कुतः कैसे पुंसाम जीव को, खुद ब खुद से ज्ञान नहीं आएगा, शुद्ध भक्तों के उपदेश को सुनेंगे तभी समझ में आएगा कि भक्तिर वैराग्य मेवा, भक्ति यानी भक्ति, वैराग्य यानी वैराग्य, एवं निश्चय ही वा भी। तो ज्ञान और भक्ति जो है वो ऐसा नहीं है कि हम बड़े होते जाएंगे और बच्चे को ज्ञान नहीं है, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा उसको खुद ब खुद ज्ञान आ जाएगा, फिर हृदय के अंदर भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जब हम शुद्ध भक्तों के जो उपदेश हैं, उनके जो आचरण हैं, उनके विषय में श्रवण करेंगे, उनको पढ़ेंगे, ये जो शास्त्र हैं उनको पढ़ेंगे, तो समझ में आएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। अनुवाद, भगवान के निष्कलुष भक्तों ने ऐसे ज्ञान के स्रोत का उल्लेख किया है। ऐसे भक्तों की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भला किस तरह भक्ति तथा वैराग्य के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे अनेक अनुभवहीन व्यक्ति हैं जो गुरु की सहायता के बिना आत्म साक्षात्कार के होने की बात करते हैं, उनका गुरु भी नहीं होता। यकीन करो, कुछ ऐसे लोग हैं वो बोलते हैं बस हमको तो पता है ना, गुरु की क्या जरूरत है, मन में भगवान बैठे हुए हैं और हम लोगों को पता चल गया, अभी हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो गए। तो ऐसा होगा ही नहीं। देखो यहाँ पर विदुर जी कहते हैं, विदुर जी जो कि साक्षात भगवान से मिल चुके हैं, भगवान के कितने शुद्ध भक्त हैं, वो भी कहते हैं निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्य घन सूरी भी स्वतो ज्ञानम कुतः पुंसा। जब तक शुद्ध भक्तों के उपदेशों को नहीं सुनेंगे, उन्होंने जो शास्त्र लिखे हैं उनको नहीं पढ़ेंगे, तब तक भक्ति वैराग्य में कभी भी भक्ति और वैराग्य नहीं आएगा। आत्म साक्षात्कार तो बहुत दूर की बात है। तो श्रील प्रभुपाद जी तो वो तो अनुभवहीन व्यक्ति हैं जो ऐसा कहते हैं, गुरु नहीं होता और फिर भी बोलते हैं हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुके। वे गुरु की आवश्यकता की निंदा करते हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि गुरु आवश्यक नहीं होता है, इसके स्थान को स्वयं ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। किंतु श्रीमद् भागवत इस दृष्टिकोण को मान्यता नहीं देता। महान दिव्य विद्वान व्यास देव को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी थी और उन्होंने अपने गुरु नारद के आदेश के अनुसार ही इस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की रचना की थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी, जो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, गुरु स्वीकार किया। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने भी प्रबुद्ध होने के लिए सांदीपनी मुनि को अपना गुरु बनाया। संसार के सारे आचार्यों तथा संतों के गुरु हैं। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया। यद्यपि ऐसी औपचारिक घोषणा की आवश्यकता नहीं थी, अतः सभी प्रकार से गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता के विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता। एकमात्र शर्त यह है कि गुरु प्रमाणिक होना चाहिए, अर्थात गुरु को परंपरा प्रणाली की उचित श्रृंखला से आया हुआ होना चाहिए। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सारी बातें बताई कि भगवान चैतन्य महाप्रभु भी ईश्वरपुरी को गुरु स्वीकार करते हैं, कृष्ण जो है वो सांदीपनी मुनि को गुरु, यहाँ तक कि वेद व्यास जी जिन्होंने सारे शास्त्र रखे वो भी गुरु महाराज नारद मुनि को गुरु स्वीकार करते हैं। तो सब जितने भी संत हैं, जितने भी भक्त हैं, उनके गुरु होते हैं। तो जो कोई बेवकूफ यह सोचता है कि गुरु के बगैर मैं भगवत प्राप्ति करने में सक्षम हूँ, वो अनुभवहीन है, बेवकूफ है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं गुरु तो बहुत आवश्यक है, अतः सभी प्रकार से गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता के विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, किसी को भी गुरु नहीं बना सकते। प्रामाणिक है अर्थात गुरु परंपरा प्रणाली से कि उचित श्रृंखला से आया है। वो जैसे हम चार श्रृंखला जो गुरु परंपराएं हैं, कुमार संप्रदा, श्री संप्रदा, रुद्र संप्रदा और ब्रह्म नारद गौड़ीय संप्रदाय, तो ये तो चार वैष्णव संप्रदाय हैं। अगर इनसे आए हैं तो गुरु कहलाने के योग्य है, वरना अगर परंपरा प्रणाली ही नहीं है तो फिर वो गुरु नहीं कहलाए जा सकते। सूरी महान विद्वान होते हैं किंतु वे सदैव अनघ या निष्कलुष नहीं होते। अनघ का मतलब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने बताया, वो तो हमेशा निष्कलंक होते हैं, लेकिन सूरी जो होते हैं अर्थात भक्त, जैसे श्लोक में लिखा हुआ है निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्य अनघ सूरी भी, अनघ यानी निष्कलुष और सूरी भी यानी भक्त। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी उसके विषय में बता रहे हैं कि सूरी विद्वान होते हैं किंतु वे सदैव अनघ या निष्कलुष नहीं होते। अनघ सूरी वह है जो भगवान का शुद्ध भक्त हो। जो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है या जो उनके समक्ष बनना चाहते हैं, वे अनघ सूरी नहीं होते। अनघ मतलब बिल्कुल निष्पाप हो और सूरी मतलब जो शुद्ध भक्त हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है या जो उनके समक्ष बनना चाहते हैं, भगवान के भक्त नहीं है बल्कि भगवान के जैसे बनना चाहते हैं, वो अनघ सूरी नहीं है, वो कभी भी निष्पाप भक्त नहीं बनते। तो शुद्ध भक्तों ने प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर ज्ञान के अनेक ग्रंथ लिखे हैं। यहाँ पर बताया निमित्तानि तत्स्येहं प्रोक्तान्यघ सूरी भी, तो जो शुद्ध भक्त हैं उन्होंने प्रामाणिक शास्त्रों को आधार लेकर बहुत सारे सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे हैं। श्री रूप गोस्वामी तथा उनके सहायकों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशानुसार भावी भक्तों के मार्गदर्शन हेतु विविध ग्रंथों की रचना की है। और जो कोई भी भगवान के शुद्ध भक्त के पद पर सच्चे मन से अपने को ऊपर ले जाना चाहता है उसे इन ग्रंथों से लाभ उठाना चाहिए। तो हम सबको उन शुद्ध भक्तों के शब्दों से लाभ लेना चाहिए ताकि हम भी भक्ति में उन्नति कर सकें, प्रगति कर सकें। आगे विदुर जी कहते हैं, एतान में पृच्छतः प्रश्नान हरे कर्म विविदसया ब्रूहि मेज्ञस मित्रत्वात् अजया नष्ट चक्षुष। एतान में पृच्छतः प्रश्नान हरे कर्म विविदसया ब्रूहि मेज्ञस मित्रत्वात् अजया नष्ट चक्षुष। एतान में पृच्छतः प्रश्नान, एतान मना ये सारे में मना मेरे पृच्छतः पूछे जाने वाले के प्रश्नान अर्थात प्रश्नों को हरे भगवान की। कर्म विविदसया, कर्म मना लीलाएं और विविदसया मना जानने की इच्छा करते हुए, क्योंकि मैं भगवान के कर्मों की लीलाओं के विषय में जानने की इच्छा करता हूँ इसलिए आपसे पूछा। तो ब्रूही में अज्ञस, अज्ञस मना मुझे बताइए, कृपया मुझे वर्णन कीजिए, ब्रूही मैं अज्ञानी हूँ। मित्रत्वात मतलब मित्रता के कारण। अजया बहिरंग शक्ति द्वारा नष्ट चक्षुषा, नष्ट चक्षुषा मतलब वे जिनकी दृष्टि नष्ट हो गई है। विदुर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं, मुनि मैंने आपके समक्ष इन सारे प्रश्नों को अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि की लीलाओं को जानने के उद्देश्य से ही किया है। आप सबों के मित्र हैं, अतएव कृपा करके उन सबों के लाभार्थ जिनकी दृष्टि नष्ट हो गई है उनका वर्णन कीजिए। तो विदुर जी कहते हैं कि आप तो सब पे कृपा करने वाले हैं, सबके मित्र हैं, तो इसलिए जो ब्रूही में अज्ञस मित्रान, जो आप सबके मित्र हैं, तो अजया नष्ट वो कौन के मित्र हैं जो भौतिक बहिरंग शक्ति के कारण माया के कारण अपनी दृष्टि खो बैठे हैं, जिनको रियल ज्ञान के बारे में पता नहीं है। तो आप बताओगे तो उनको पता चलेगा ना, क्योंकि शुद्ध भक्तों के वर्णन के बगैर तो किसी को भी भगवान की भक्ति और वैराग्य ज्ञान प्राप्त होता नहीं है। तो आप सबके कल्याण के लिए बताइए। श्रील प्रभुपाद खीर, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, विदुर ने भगवान की प्रेमा भक्ति के सिद्धांतों को समझने के उद्देश्य से नाना प्रकार के प्रश्न पूछे। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 2.41 में वर्णन हुआ है कि भगवान की भक्ति अनन्य है और भक्त का मन अनिश्चितताओं की अनेक शाखाओं की ओर नहीं मुड़ता। तो विदुर का उद्देश्य भगवान की उस सेवा में स्थिर बने रहना था जिसमें मनुष्य इधर उधर भटके बिना लीन रहता है, बहुशाखा अनंताश। तो विदुर चाहते थे कि बस भगवान के विषय में सुनते रहें और भगवान के अंदर ही मन लगा रहे। उन्होंने मैत्रेय मुनि की मित्रता का दावा इसलिए नहीं किया कि वे मित्रा के पुत्र थे, किंतु इसलिए किया कि मैत्रेय वस्तुतः उन सबों के मित्र थे जिन्होंने भौतिक प्रभाववश अपनी आध्यात्मिक दृष्टि खो दी है। तो बोले कि आप तो सबके मित्र हो ना, तो आप भगवान के विषय में बताओ। आगे कहते हैं, सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि च नग जीवाभय प्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामपि। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च, सर्वे मना सभी तरह के वेद मना वेदों के विभाग, और यज्ञाश्च यानी यज्ञ च भी तप यानी तपस्याएं, दान यानी दानानी, और च अनघ हे निष्कलुष हे पाप रहित मैत्रेय मुनि, सारे वेद तपस्या ज्ञान दान इत्यादि जीवा भय प्रदानस, जीव मतलब जीव, अभय यानी भौतिक पीड़ाओं से मुक्ति, प्रदानस ऐसे आश्वासन देने वाले नहीं कुरवीरन बराबरी की जा सकती कलाम अशंत यानी अशंत भी अपि यानी निश्चय ही। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि हे अनघ, इन सारे प्रश्नों के आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकते हैं। ऐसा दान समस्त वैदिक दानों, यज्ञों, तपस्याओं इत्यादि से बढ़कर है। सबसे बड़ा दान क्या है जानते हो? कि जीव को ऐसी शिक्षा देना कि उसका मन भगवान में लग जाए बस। तो जब मैत्रेय मुनि इन सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे तो विदुर जी कहते हैं सर्वे वेदांश यज्ञाश तपोदानं चनानक, कि जितने भी यज्ञ हैं, वेद हैं, तपस्याएं, दान, वो सब करना भी इतना से भी इतना लाभ नहीं मिलता है। लेकिन जीवा अभय प्रदानस्य, जिससे जीव को अभय प्रदान हो जाए, क्योंकि अभय का मतलब होता है कि उसको भौतिक पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाए। तो वो भौतिक पीड़ाओं के से मुक्ति किसी दान से नहीं मिलेगी, यज्ञों के करने से नहीं मिलेगी, तपस्याओं से करने से नहीं मिलेगी, बल्कि वो कब मिलेगी? जब भगवान की प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा, जब हम अपने आप को जानना शुरू करेंगे कि हम तो आत्मा है। जिस समय जीव जान तो लेता है कि मैं ये आत्मा हूँ, लेकिन जिस समय उसे ये रियलाइज होता है ना कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का दास हूँ, फिर कोई कष्ट नहीं रहता। और जिसको ये रियलाइज जो करा देता है, वो सबसे बड़ा दान करता है। इसलिए यहाँ अनुवाद देखिए, हे अनघ, इन सारे प्रश्नों के आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे। बस आपने बता दिया तो सब आपके कष्ट खत्म हो जाएंगे। और ये जो दान है, ऐसा दान समस्त वैदिक दानों, यज्ञों, तपस्याओं इत्यादि से बढ़कर है। शिला प्रभुपाद की, शिला प्रभुपाद जी कहते सबसे बड़ा दान है सामान्य जनों को संसार की चिंताओं से मुक्ति दिलाना। ऐसा केवल भगवान की भक्ति में सेवा संपन्न करने से ही हो सकता है। ऐसा ज्ञान अनुपमेय है। वेदों के ज्ञान का अनुशीलन करना, यज्ञ करना तथा दान करना, ये सभी मिलकर भक्ति से प्राप्त होने वाली तथा संसार की पीड़ा से मिलने वाली शांति का के एक अंश के भी तुल्य नहीं है। भक्ति से जो शांति मिलती है, जो आनंद मिलता है, वो किसी और वस्तु से नहीं मिलता। क्योंकि ये जो भगवान के विषय में श्रवण कर रहे हैं ना, संसार की सारी चिंताओं से मुक्ति दिला देता है। और जब जीव निर्भर हो जाता है ना भगवान के ऊपर, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। उसको पता ही नहीं होता टेंशन का मतलब क्या है। और ये हमारा प्रैक्टिकल है, जैसे जैसे भगवान पर निर्भर होते जाते हैं, वैसे वैसे सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है। जो जो भगवान करवाना चाहते हैं, जो जो भगवान भगवान की इच्छा होती है, वो तो भगवान करवाएंगे, तो उसके लिए हाँ। और जो नहीं करवाना चाहते, उसके लिए भी हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। अब देखो ये कितना सरल है कि भगवान पर निर्भर हो जाओ, कि भगवान मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, तुम जो चाहोगे वो मुझसे करवाओगे, तुम जो नहीं चाहोगे वो तुम्हें नहीं कर सकूंगा, मुझसे करवाओगे भी नहीं। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ तुम पर श्रद्धा रखना है और गुरु आदेशों का पालन करना, बस। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ गुरु आदेशों के अनुसार अपने जीवन को गुजारना है, बस। और उसके लिए मुझे दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत करनी है। बाकी तुम्हें जहाँ उचित लगेगा, तुम तो सबसे ज़्यादा बड़े कारीगर हो ना, तो मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं तो एक स्क्रू हूँ, जहाँ पर लगे मुझे फिट कर देना। बाकी मुझे उस स्क्रू को कभी, या जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कभी चिंता होती है कि मुझे मेरा जो बनाने वाला है वो यहाँ पर लगाएगा तभी मैं अच्छा लगूंगा? कभी सोचता है? जो कारीगर बनाता है, जो इंजीनियर बनाता है, उसे पता होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट बनाया है तो कौन सा स्क्रू कहाँ पर शिफ्ट करना है, कहाँ पर फिट करना है, उसको पता है। तो भगवान ने बनाया ना हमको, तो भगवान को पता है कि हम कहाँ कहाँ के लिए सुइटेबल हैं। तो कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए और भगवान स्वतः कराएंगे। वो हृदय में बैठे हुए हैं, उनके भी जो भक्ति में नहीं है और आपके भी, तो कोई भी
भगवान के होते हुए कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता, कोई आपको परेशान नहीं कर सकेगा, आप खाली निश्चित रूप से भगवान की शरणागति हो जाइए। विश्वास कर दीजिए कि वो सुहृद है, वो भला चाहने वाला है, वो जो करेगा उसी में भला है, उसका भी मेरा भी, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा, सारी चिंताओं से जीव मुक्त हो जाएगा। शिला प्रभुपाद की, शिला प्रभुपाद जी कहते सबसे बड़ा दान सामान्य जनों को संसार की चिंताओं से मुक्ति दिलाना है, ऐसा केवल भगवान की भक्ति में ही सेवा संपन्न करने से हो सकता है। ऐसा ज्ञान अनुपमीय है, वेदों के ज्ञान का अनुशीलन करना, यज्ञ करना तथा दान देना, ये सब मिलकर भक्ति के प्राप्त होने वाली, संसार की पीड़ा से मिलने वाली शांति के एक अंश के बराबर भी नहीं है। मैत्रेय के दान से ना केवल विदुर लाभान्वित होंगे अपितु अपनी वसुधामयी प्रकृति के कारण यह दान सभी कालों में अन्य सबों के उद्धार के लिए इस तरह उद्धार करेगा। इस तरह मैत्रेय अमर है। तो ये देखो, विदुर जी ने तो 5000 साल पहले मैत्रेय मुनि से ये ज्ञान, ये क्वेश्चंस किए थे, लेकिन 5000 साल के बाद भी जिसने हजारों सालों में इस ज्ञान को पढ़ा होगा, वो सब भगवान के साथ प्रेम करके अपनी समस्त चिंताओं से अभय प्राप्त कर चुके होंगे। आज हमको भी भगवान ने यह अवसर दिया है, और भागवत पढ़ने का तो यही उद्देश्य है ना, कि भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो और जीवों के प्रति या संसार के प्रति जो आसक्ति है वो समाप्त हो जाए, तो जिसके कारण जीव अभय प्राप्त करेगा। तो पहले भी बहुत सारे अभय प्राप्त कर चुके, आज हमको अवसर मिला है, और अनेक अनेक वर्षों तक दूसरों को भी अवसर मिलता रहेगा। इसीलिए कहा कि इस तरह मैत्रेय मुनि अमर हैं। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच, श्री शुक उवाच, स इत्थमा पृष्ठ पुराण कल्प कुरु प्रधाना कुरु प्रधानेन मानो प्रदा मुनि प्रदान प्रवृत्त हर्षो भगवत कथायां संचोदितस्तं प्रहसन्निवाह स इत्थमा पृष्ठ पुराण कल्पः कुरु प्रधानेन मुनि प्रधान प्रवृत्त हर्षो भगवत कथायां संचोदितस्तं प्रहस सन्निवाह स इत्थम आ समन श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, समन वह, इत्थम मन इस प्रकार, आपृष्ट पूछे जाने पर पुराण कल्पः जो वेदों के पूरी को यानी पुराणों की व्याख्या करना जानता है, कुरु प्रधानों कौरवों के प्रधान द्वारा, मुनि प्रधान प्रमुख मुनि, प्रवृद्ध यानी पर्याप्त रूप से समृद्ध, हर्ष संतोष, भगवान अर्थात भगवान कथायाम भगवान की कथाओं, भगवत कथायाम मतलब भगवान की कथाओं में संचोदित इस तरह प्रेरित होकर तम विदुर को प्रहसन हंसते हुए इव आह इव मन इस प्रकार आहो मन उत्तर दिया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस तरह वे मुनियों के प्रधान जो भगवान विषयक, क्षमा कीजिए, सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस तरह वे मुनियों में प्रधान जो भगवान विषय कथाओं की का वर्णन करने के लिए सदैव उत्साहित रहते थे, विदुर द्वारा इस तरह प्रेरित किए जाने पर पुराणों की विवरणात्मक व्याख्या का बखान करने लगे। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में बोलने के लिए अत्यधिक उत्साहित थे। तो भक्तों का तो एक ही काम है वैसे ही, कि भगवान के विषय में बोलना, मत चित्ता मत गतः प्राणा बोधयंतम परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च नमन्ति च। भक्तों को बस ऐसी एक ही चीज में आनंद आता है, भगवान की कथाओं को करना, भगवान की लीलाओं को बताना। तो मजा तो तब आता है कि ना कोई जिज्ञासु उन विषय में पूछता है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, भक्त लोग बोलते हैं कथा, इतना अच्छे से तैयारी करके आते हैं और बोलते हैं कि भाई मुझे ये प्रसंग बोलना है, और वहां पर आगे देखते हैं कोई उत्साहित होता ही नहीं है। वो लोग सब टाइम को देख रहे होते हैं कि कभी ये सारा टाइम खत्म हो और ये बस करे, है ना। तो ज्यादातर क्या होता है, वो भक्त बेचारे निराश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उत्साह के साथ बताते हैं, तैयारी करके आए तो फिर भी बताते हैं। लेकिन देखा जाता है कि जन सामान्य में श्रवण करने की इतनी इच्छा नहीं होती है। उनकी इच्छा क्या होती है, बस थोड़ा सा बताया जाए और जल्दी से कथा खत्म हो जाए तो हम प्रसाद करके घर जाएं। लेकिन मजा तो तब आता है जब कोई जिज्ञासु इतने सारे प्रश्न पूछता है जो कि भगवान के विषय में होते हैं, तो बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर बताया कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि वो तो बहुत उत्साहित थे भगवान के विषय में, वो भगवान की दिव्य कार्यकलापों के विषय में बोलने के लिए अत्यधिक उत्साह थे। वो बहुत संतुष्ट हुए, बहुत खुश हुए कि विदुर जी ने कितने अच्छे से प्रश्न पूछे, अब तो मैं बहुत अच्छे से उनका उत्तर दूंगा क्योंकि सुनने वाला मेरे पास है। तो ज्यादा संख्या में बहुत सारे लोग आ जाए और वो सुनने की इच्छा ना करें, इससे बेहतर तो एक ही है कि जो एक ही बैठा है लेकिन सुनने की इच्छा तो कर रहा है। हम देखते हैं भागवतम में क्या है, जहां जहां कथा हो रही है ना वहां पर एक श्रोता है, एक ही वक्ता है। देखो मैत्रेय मुनि कितने बड़े भगवान के भक्त हैं, भगवान का साक्षात्कार करके आए। भगवान जी जब उद्धव जी को ज्ञान दे रहे थे तो मैत्रेय मुनि भी वहां पर थे, और मैत्रेय मुनि जब कथा कर रहे हैं तो सामने कौन बैठे हुए, एक अकेले विदुर जी सुन रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि मेरे पास बहुत बड़ा पंडाल भरा हुआ हो, नहीं, वो विदुर जी को बता रहे हैं। अब भगवान स्वयं जब कपिल जी का अवतार लेकर आए तो वो जब कथा कर रहे हैं तो सामने कौन बैठी हुई है, एक स्त्री अपनी माँ बैठी हुई, उसको बता रहे हैं, सांख्य योग बता रहे हैं। नारद मुनि कथा कर रहे तो कौन कौन सुन रहा है जानते हो, नारद मुनि कथा कर रहे हैं, गर्भवती स्त्री सुन रही, वो भी सो रही, अंदर बैठा हुआ बालक सुन रहा है खाली। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भले एक भी सुन रहा हो लेकिन वो एक परीक्षित जैसा हो, प्रहलाद जैसा हो, या विदुर जी जैसा हो, या माता देवहूति जैसा हो। तो वो बहुत संतुष्ट हुए श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मैत्रेय मुनि जैसे महान विद्वान मुनिगण भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने के लिए सदैव अत्यधिक उत्साहित रहते हैं, इस तरह बोले जाने के लिए विदुर द्वारा आमंत्रित किए जाने पर मैत्रेय मुनि हंसते से प्रतीत हुए, क्योंकि उन्हें वास्तव में दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत विदुर जी द्वारा अन्य प्रश्न नामक सातवें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छी तरह से कर सकूँ।